Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ki pratham adhyaya samanubhashya chal raha hai. To Bhagavan ka ye pratigya hai ki यदि जितने भी संसार में पापियां हैं उन पापियों में तुम सबसे बड़ा पापी हो, चेद पापेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य असि, यदि तुम सभी पापियों में यदि तुम पाप कृतम यानी सबसे बड़ा पाप करने वाला भी हो तो सर्वम ज्ञान प्लवे नैव विरजिनम संतरिष्यसि, तो आप जो ज्ञान रूपी नौका से सभी पापों को तर जाओगे, पार कर जाओगे। हाँ ठीक है, आगे उस चतुर्थ अध्याय के 37वां श्लोक में ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, अब तथा यदि है तो फिर यथा तो उसके ऊपर में तो होगा ही है। हाँ तथा जिसे लिख रहे हैं, यथा क्या है, यथे धानसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, कहा कि ये जो समिद्धोग्नि यानी प्रज्वलित जो अग्नि है, हाँ हुत हुत जलता हुआ जो अग्नि है, ये ऐधानसी यानी ये ईंधनों को हाँ जैसे भस्मसात कर देता है, भस्मीभूत कर देता है, हाँ खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है अर्जुन, उसी प्रकार ये ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि, ये जो ज्ञान रूप अग्नि भी सभी कर्मों को भस्मसात कर देता है। हाँ ठीक है, अब यही तो अभी पढ़ते जाएंगे, आप लोग भी सुनते जाइएगा, सुना नहीं है सुनते जाएगा, सो जाएंगे तो फिर मैं भी सो जाऊंगा। हाँ सुनते जाइएगा, अब क्या अब यही तो पढ़ना है अभी, क्योंकि यहाँ अभी पूर्व पक्ष सिद्धांत तो कुछ आने वाला नहीं है तर्क। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्याद् कृतकृत्यश्च भारत, ये सुनकर के जो है क्या सुनकर के, उससे पहले इति गुह्यतम शास्त्र मेदम उक्तम मया नघ, हे अनघ हे निष्पाप, हाँ मेरे द्वारा ये कहा गया, ये जो गुह्यतम शास्त्र है सीक्रेट मोस्ट सीक्रेट, गुह्यतम तम प्रत्यय है जो है, हाँ रहस्यमय, ये रहस्यमय ग्रंथ को मैं पहली बार इस रास्ते में आ रहा था, भगवद्गीता कभी जानता ही नहीं था, भगवद्गीता में आया कि भगवान जो है कि सबसे बड़ा गुह्यतम शास्त्र को बता मैं कह रहा हूँ अर्जुन को, ये नवमा अध्याय में आया है, तो मैंने सोचा मैं तो कोई भगवद्गीता जानता ही नहीं था, अरे ये इतने मोस्ट सीक्रेट है ये, तो मैं तो ये श्लोक में आ रहा है मैं तो पढ़ रहा हूँ और उसका अर्थ तो नीचे लिखा हुआ है। इसमें और रहस्य क्या चीज है इसमें, नहीं समझे। हाँ मुझको लगा अरे ये तो यदि कोई कहा कोई जानता होगा और बताता नहीं होगा उसके पीछे पड़ो पीछे पड़ो, चाहे कृष्ण भगवान को ये चाहे बड़े संत महात्मा को, और कितने साल होने के बाद फिर बताते हैं, हाँ तो फिर कुछ मोस्ट सीक्रेट है। अब सामने लिखा हुआ है और उसके नीचे हाँ संस्कृत है, संस्कृत हम नहीं जानते थे उसका अर्थ क्या, नीचे भी उसका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, उसे संस्कृत लिखा है और उसके नीचे हिंदी अर्थ लिखा है, मैं तो समझ रहा हूँ और इसमें रहस्य क्या है। हाँ ऐसे मत समझिएगा, और एक ये एमएससी स्टूडेंट था वो फिलोसफी कुछ किया था यूनिवर्सिटी में, उसने भी मुझे कहा कि ये भगवद्गीता में क्या सीक्रेट है, सब तो है ये लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, तो ऐसे लोग भी ऐसे से समझ रहे हैं, लेकिन बड़ा रहस्य ये ग्रंथ है, ये गुह्यतम शास्त्र है और श्री कृष्ण भगवान के द्वारा कहा जा रहा है, हम पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं थोड़ा बुद्धि लगा देते हैं तो हम समझ लेते हैं, कभी नहीं है वो, ना समझेगा वो चीज ही नहीं है ये। गांव के किसान को इसका रहस्य मालूम पड़ता है, लेकिन बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष को मालूम नहीं पड़ता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे किसान लोग हैं जहाँ भागवत पढ़ते हैं और ब्रह्म में स्थिर होते हैं, और जबकि हम लोग इतने बुद्धिमान हैं लेकिन हम लोग भी पकड़ में नहीं आता, ऐसे सारी कथाएं हैं। कृतकृत्य से भारत, ये जो कृतकृत्य बुद्धिमान और जो कृतकृत्य हो जाता है, ठीक है, आगे गीता का ही 18वां अध्याय का एक श्लोक उठा रहे हैं। ततो माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, उसके बाद तत्त्वतः मुझको जानकर माम ज्ञात्वा तदनंतरम, ठीक उसके बाद मुझ में प्रविष्ट कर जाता है। अब उसके बाद कहा, अब उससे पहले क्या कहा, नहीं समझे? क्योंकि उसके बाद तत्त्वतः मुझको जान करके उसके बाद, अब उससे पहले क्या कहा उस भगवद गीता में, कहा कि भक्त्या माम अभिजानाति आवान यश्च अस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, ठीक है, यावान यह च अस्मि तत्त्वतः, यावान यह च अस्मि तत्त्वतः, यह जो मैं हूं, यह अस्मि जो मैं हूं, यह अहम अस्मि जो मैं हूं, यावान और मेरा जितना है, अर्थात जितना मेरा एक इतना बड़ा जो स्वरूप है, तत्त्वतः यानी वस्तुतः, यदि कोई वस्तुतः मेरा जो स्वरूप है और मेरा जितना बड़ा स्वरूप है और जो मैं हूं और मेरा जो स्वरूप है, तत्त्वतः माम भक्त्या अभिजानाति, बोध यदि जानना है तो भक्ति के द्वारा ही जान सकता है, नहीं समझे? मैं जो हूं और मेरा जितना है, चाहे तुम मैं जो हूं यानी आप सच्चिदानंद स्वरूप कहो और जितना यानी उसका विराट स्वरूप कहो, हाँ, मैं जो हूं और मेरा जो मेरा जितना है, जहां तक है मैं मेरा, ये भक्त्या अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही जानते हो यानी जान सकते हो, बिना भक्ति से नहीं जान सकते हो। हाँ, आप भक्ति कैसा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप करना ही भक्ति है, हाँ ये भी भक्ति क्यों नहीं है, हाँ? मंदिर आश्रम में निष्काम रूप से सेवा करना ये भी भक्ति है, भज सेवायाम धातु है, भज का अर्थ सेवा करना है, यदि निष्काम रूप से यदि सेवा कर रहे हैं तो वह भी भक्ति है, कीर्तन कर रहे हैं हरे राम हरे कृष्ण वाले कीर्तन कर रहे हैं, आप कीर्तन करते करते वो भी बोलते हैं भक्ति करते हैं, चाहे आप किसी प्रकार भी क्रिया करें, लेकिन ब्रह्म भूत होना चाहिए, ब्रह्म में निष्ठ होना चाहिए, ठीक है, और आपका चित्त जो है प्रसन्न होना चाहिए। कहा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, इसके ऊपर श्लोक में पराभक्ति के विषय में भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा बढ़िया से अब और क्या आपको बताएंगे, वो आत्मा प्रसन्न हो, कितने भी हम करते हैं, कितने भी भजन करते हैं, कितने सुनते हैं, हजार साल से हम सुनते आ रहे हैं, एक काशी में हमारे जो विश्वासानंद जी आ रहे हैं ना, उनके पास मेरा पाठ चल रहा था और एक महात्मा के भी पाठ चल रहा था, वो आचार्य का ग्रंथ पढ़ रहे थे, वो परीक्षा दे रहे थे, हम परीक्षा नहीं दे रहे थे, तो एक लास्ट ग्रंथ चल रहा था, अब वो ग्रंथ उस दिन समाप्त होने वाला था, परीक्षा देने वाला था, वो जानने के बाद पाठ समाप्त होने के बाद उसने मुझे कहा, तो मैं थोड़ी सी किसी थोड़े चिंतन के विषय में ज्यादा हमारा डिस्कस चलता रहता है, कहा कि स्वामी जी इतने सारे ग्रंथ और आचार्य का ग्रंथ आखिर ग्रंथ जो आपका बृहद प्रश्नांतरी जो कहते हैं यानी ब्रह्मसूत्र के बाद अद्वित सिद्धि आदि जो बृहद प्रश्नांतरी में जो ग्रंथ आ जाते हैं, अब वो समाप्त हो गया, वो कह रहे हैं कि वेदांत का क्या चिंतन करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो सारा वेदांत का ग्रंथ आखिर ग्रंथ समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या चिंतन करूं, वेदांत का सुनने के बाद चिंतन की शैली जो चाहिए, किस प्रकार से चिंतन करना है, ये समझ में नहीं आ रही, इसलिए आप थक जाओगे, थक जाओगे। न कांक्षित न सोचती न कांक्षती, शोक नहीं करता है, इच्छा नहीं करता है, हाँ? जो ब्रह्मभूत जो प्रसन्न आत्मा है और समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, सभी भूतों में जो एक समत्व भाव है, हाँ, ये जिसको प्राप्त हो गया तो समझ लेना है कि मेरी भक्ति मेरा मेरी पराभक्ति उसको प्राप्त हो गई, इसको कहते हैं भक्ति, हाँ? ब्रह्मभूत हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, और प्रसन्न आत्मा हो, चित्त प्रसन्न हो, ना सो करता हो, ना कोई इच्छा हो, और सभी भूतों में एक समभाव हो। समभाव बोलकर के कुत्ता को गले में लेकर के गोद में बिठा कर खिलाना ये समभाव नहीं है। ये मत बोलते कि अरे कुत्ते में तो वो भगवान है तो हम भी उसको अब लेकर चलते रहते हैं बॉम्बे टाउन में, इसको समभाव नहीं कहते हैं। समभाव जो है समदर्शन है, शास्त्र में समदर्शन आया। व्यवहार में समभाव नहीं होता है। व्यवहार में यदि कोई कलेक्टर आया तो आपको तो उसको तो एक अच्छे आसन में बिठाना पड़ेगा, कुर्सी देना पड़ेगा। सामान्य आदमी है तो उसको पीछे बिठाना ही पड़ेगा आपको। ये व्यवहार है, व्यवहार में भिन्नता है, और व्यवहार में आप उपाधि के अनुसार उचित व्यवहार करना ही समभाव है। लेकिन उसमें चाहे वो नौकर हो चाहे ये कलेक्टर हो, कलेक्टर के अंदर में परमात्मा है, नौकर के अंदर परमात्मा है। आप उनको इस प्रकार नौकर को पीछे बिठा दिया और कलेक्टर को यहां सामने बिठाया और दोनों के अंदर में जो परमात्मा है उसको आप दर्शन किया, ये समभाव है। अंदर में जो परमात्मा है उसको दर्शन करना, यह दर्शन की बात है, व्यवहार की बात नहीं है। व्यवहार तो ज्यों त्यों है। अब शरीर भी जैसे हम जो व्यवहार कर रहे हैं, हम तो शरीर नहीं दिए आपको, आपका जो शरीर जो प्राप्त हुआ आपके कर्म से प्राप्त हुआ, मैं तो नहीं दिया, उनको तो नहीं दिया। लेकिन आप आएंगे तब भी आपके शरीर से एक गंध निकलता है, वो आएगी तो फिर उसके एक शरीर दूसरा गंध निकालता है। नीच योनि से ब्राह्मण शरीर से क्षत्रिय क्षत्रिय से वैश्य वैश्य से शूद्र स्त्री फिर जो चंडाल चंडाल से और अति चंडाल अब जाएंगे, वो व्यक्ति सामने आते ही उस शरीर से अपने वो गंध निकलता है। ये नहीं कि आप अच्छा एक साबुन एक सेंटेड साबुन दे दो, वो पूरा एकदम बढ़िया से आधा घंटा तक मालिश होकर के स्नान करके आएगा फिर गंध उसके शरीर से, अच्छा कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता है, शरीर से भी गंध निकलता है। जैसे जैसे आपके अंदर में उत्कृष्टता बढ़ेगी शरीर से अलग गंध निकलता है। अच्छे कोई यदि यानी गंध को जय करने वाला प्राप्त करने वाला कोई महात्मा होगा तो उसको पूरा महसूस हो जाता है। इसलिए आप इसको कभी इधर उधर नहीं कर सकते, इस व्यवहार को आप इधर उधर नहीं कर सकते। यदि आपको मैंने बिठा दिया, आप यहां बैठे हैं, कोई आया मैं उसको समभाव दर्शन कर रहा हूं और आपके पास में कुर्सी खाली है, मैंने उसको बिठा दिया, आप तो यूं करते रहेंगे, कैसे बैठ गया कैसे बैठ गया, आप देखते रहेंगे उसको, आप क्या फिर सुनेंगे क्या है, तो आप तो पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जिससे उससे पहले आप बोल रहे स्वामी जी आप लोग समभाव दर्शन करते आप ऐसा करते हैं, अब जब आपके पास कोई गंदगी कपड़ा पहन कर बैठ जाएगा आप यूं नाक टकेंगे और आपने पहले से क्यों टोक रहे थे। ऐसा व्यवहार में ऐसा होता नहीं है, ये जो है दर्शन है, अब दर्शन कीजिएगा आप। तो कहा कि आप जो है सभी में सभी भूतों में समान दर्शन करना है, ये भक्ति है, इसको ही पराभक्ति कहते हैं। और इस भक्ति के द्वारा ततः मां फिर इस पराभक्ति के द्वारा मुझको जान करके ठीक उसके बाद आप प्रवेश कर जाते हैं, यानी तुम प्रवेश कर जाओगे। ठीक, ये गीता का यहां समाप्त हुआ, आगे देखिएगा। सर्वेषामपि च एतेषाम आत्मज्ञानम परम स्मृतम। सर्वेषामपि च एतेषाम, एतेषाम सर्वेषाम अन्वय करना है, एतेषाम सर्वेषाम इन सभी का भी आत्मज्ञानम, अर्थात इन सभी का क्या लेना है, इन सभी का से इन सभी साधनों में साधन लेना है, जितने भी साधन है इन सभी साधनों का भी आत्मज्ञानम परम स्मृतम, यानी आत्मज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट है, परम स्मृतम। आत्मज्ञान से ही मोक्ष है, आत्मज्ञान से मोक्ष है, बाकी साधन जो है सब जो है अंतकरण सब शुद्ध करने वाला है। तद्यग्रियं सर्व विद्यानां प्राप्यते ह्यमृतम यतः, तद ही उसे संधि विच्छेद करो, तद ही अग्रियम सर्व विद्यानां, सभी विद्याओं का वो अग्र है, सबके बढ़कर के हैं, उच्च उच्च है, हाँ, सबसे बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यतः जिस कारण से ही, क्योंकि जिस कारण से अमृतम प्राप्यते, अमृतत्व को प्राप्त करता है। हाँ? नहीं समझे, बात साफ है। हाँ? ठीक है, वो ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट, ज्ञान का ही महत्व यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, आत्मज्ञान के महत्व बता रहे हैं। अब आत्मज्ञान के महत्व इसे बता रहे हैं सोच करके, बोला वो आत्मज्ञान में ही बस सुनने लगे कुछ पल्ले में नहीं पड़ेगा। ऐसी बात सोचिएगा कि आत्मज्ञान सुनते जा रहे और पूरा हाथ में आ जाएगा। उससे पहले जो निष्काम सेवा कर्म आदि जो करना है, उपासना करना है, उसी में लगे रहेगा। आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि आत्मज्ञान से ही साक्षात कारण है और बाकी ये गौण है। इस गौण कारण यदि आपके हाथ में नहीं आया है, उसमें लगे रहेगा और इसको सुनते जाइएगा। वेदांत श्रवण से आपको बहुत सारे ज्ञान होगा, लेकिन कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, ये उचित अनुचित का ज्ञान होता है। और सिद्धि जो है पूरा छोड़ छाड़ देकर इसको ही सुनने से हो जाएगा, होगा नहीं हो, करते जाइएगा। और बहुत ऐसे मिलते हैं वेदांत सुनने के बाद मंदिर में जाना छोड़ देते हैं, दान धर्म करना छोड़ देते हैं, महात्माओं में एक आदर भाव ये भी छूट जाता है। ये बहुत सारे जो है लक्षण दिखाई पड़ते हैं, एक नहीं हजारों ऐसा दिखाई देते हैं। इसलिए सचेतन रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, सुनते सुनते ऐसा ना हो जाए। एक समान एक ड्रिलिंग होता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। वो प्राप्यते ही अमृतम यतः प्राप्य एतत् कृतकृत्यो ही द्विजो भवति न अन्यथा। एतत् प्राप्य अन्य करो, एतत् प्राप्य इसको प्राप्त करके कृतकृत्य कृतकृत्य हो जाता है। कौन ना द्विज, जो द्विज है, द्विज किसको कहते हैं? नहीं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर वो तो कुछ रहने जाएगा, वो बात नहीं है। द्विज जो है, हाँ, जो कर्म संस्कार जो है, यज्ञ पे भी पवित्र जो संस्कार है कराने के बाद, तो सभी को नहीं करा जाता है वो। और ये नहीं कि द्विज का अर्थ ब्राह्मण ही नहीं है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है। वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण है, ये तीनों जो है, इन तीनों को ही यज्ञ पवित्र संस्कार करवा के दूसरा जन्म होता है। तो इसलिए ये द्विज है, यानी शास्त्र पढ़ने में इन लोगों का अधिकार है। आप बोलेंगे फिर हमारा पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण है। अच्छा, ठीक है। कुछ ऐसे आप लोग तो बहुत सारे सुन के रखे हो, जो कर्मकांड आदि और जो गुरुकुलों में जो शुरुआत से जो पढ़ाया जाता है, ऐसा क्रम प्राप्त ना हो, उन वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण को प्राप्त हो, लेकिन परमात्मा प्राप्त करने के लिए भगवद्गीता सुनना, संस्कृत का अध्ययन करना, ये किसी को, यहाँ पशु को भी प्राप्त हुआ है, तो फिर मनुष्यों की बात ही क्या है? इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आप बोलेंगे कि मैं क्रम से एक, यदि आप एमए डिग्री यदि प्राप्त करना चाहेंगे, घर में बैठ करके आपका एमए का आपका नॉलेज है, तब बोलेंगे मैं एमए बन गया हूं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आप डिस्कस करेंगे तो आप उत्कृष्टता दिखाई पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपको सर्टिफिकेट यदि प्राप्त करना हो, तो एक क्लास में भर्ती होना पड़ेगा, फिर क्रमशः फिर एक एक डिग्री करते 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 एमए तक आना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट देगा। ये क्रम प्राप्त है, ऐसे किसी को प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन नॉलेज प्राप्त करने के लिए सभी का अधिकार है, ये बात है। तो कहा कि एतत् कृतकृत्यः, एतत् प्राप्य कृतकृत्यः द्विजः भवति न अन्यथा, और दूसरे किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। ठीक, एवं यह सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना, इसी प्रकार जो सभी भूतों में पश्यति, किसके द्वारा? आत्मना आत्मानम, आत्मा के द्वारा आत्मा को। पहला आत्मा से क्या लेना है? हाँ? आत्मना आत्मानम, पहले आत्मा जो आत्मना में जो आत्मा है, क्या किसको लेना है? मन को लेना है, अंतकरण को लेना है, ठीक है। आत्मना आत्मानम पश्यति, अब कैसे आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, यानी अंतकरण से कैसे आत्मा को दर्शन करना, तो फिर तो आपको तो फिर वो प्रक्रिया देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कैसा देखना होता है, हाँ, इसे अंतकरण के द्वारा उसे परमात्मा को, जबकि अंतकरण का विषय नहीं है, परमात्मा विषय नहीं है, फिर अंतकरण का परमात्मा कैसे विषय बन जाता है, बनता है तो कैसे बनता है, नहीं बनता है तो कैसे नहीं बनता है, ये जो प्रक्रिया है, ऐसे होकर के जो साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा होते होते जो साक्षात्कार हो जाता है, और नहीं होता तो बात ही नहीं है, तो जानना तो उसी से ही जानना है। हाँ, ये जो है, ये केन उपनिषद में बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बढ़िया व्याख्या है। आप लोग शायद पढ़े होंगे, और जैसे आप पढ़ चुके हैं, आपको शुरू करना तो केन उपनिषद शुरू करते तो बहुत अच्छा होता है। बहुत बढ़िया है केन उपनिषद में जो शिष्य गुरु शिष्य का जो संवाद जो है, आप पॉइंट टू पॉइंट है एकदम आता है, वो भी है। आप लोग उसको, आप लोगों का क्या है ना, क्या हो गया, अब सुनते 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 जा रहे हैं, ये सुन लिया, वो सुन लिया, वो इससे और आखिर ग्रंथ किया है, इससे और आखिर ग्रंथ किया है, आप सब पहाड़ चढ़ रहे हैं, पर्वत चढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्योंकि किस अवस्था से आप सुनते आ रहे हैं, उस समय आप क्या अवस्था थी, कितनी साधना में कितनी परिपक्वता आ गई थी, अभी कुछ सुनोगे ना, वही ग्रंथ को अभी सुनोगे ना, फिर आपका दिमाग खुल जाएगी, बहुत चीज पकड़ में आएगी। जैसे ब्रह्मसूत्र सुनना है, वही ब्रह्मसूत्र फिर पहले से भी सुनिएगा, देखो फिर क्या मजा आती है, फिर एक अलग मजा आती है। और इसका नाम वेदांत है, वेदांत का नाम ग्रंथ समाप्ति करने का वेदांत नहीं है, आपका सुनने के बाद आपका मनन चिंतन हो तो वो वेदांत है। तो